Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. बाबा ने हम बच्चों को आते ही अनेक प्रकार के बंधनों से सहज मुक्त कर दिया और हम सभी प्रैक्टिकल अनुभव भी करते थे, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में भी आ जाते थे, लेकिन इतनी सुंदर विधि बाबा ने बता दी जो सहज हम सभी मुक्त हो गए। और इसीलिए भी बाबा कहे, आप अपने जीवन के एग्जाम्पल द्वारा दूसरों को भी इन बंधनों का रियलाइजेशन कराते हुए उनको भी मुक्त होने की युक्ति बताओ। तो सबसे पहले तो हम ये जाने समझे कि अधिकतर जो मनुष्य के बंधन है, कौन से बंधन है, क्योंकि आज प्रैक्टिकल दुनिया में हर इंसान बंधनों से फ्री होने के लिए, मुक्त होने के लिए कोशिश करता है, परंतु जितना ही कोशिश करता उतना ही अधिक उस बंधनों की दलदल में समाता जाता है। और इसीलिए फिर वो बंधन वाली जीवन ही स्वीकार कर ली कि दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ, यही समझ लिया कि यही जीवन है, इसके सिवाय जीवन नहीं होता है। जीवन हो और बंधन न हो, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वो संस्कार बाबा हमारा यहां भरते हुए हमें ऐसे जीवन मुक्त स्थिति में ले जाते हैं जिससे भविष्य में सदा के लिए जीवन मुक्त बने रहेंगे। तो मनुष्य जीवन में जो भी बंधन है, वो बंधन की जड़ को आज हम देखेंगे और फिर उसे मुक्त होने की युक्ति क्या है। सबसे पहले जो मनुष्य के जीवन में बंधन बनता है, उसका मुख्य जड़ कहो या उसका मुख्य कारण कहो, वह है मैंपन। देह अभिमान में आकर के जब मनुष्य कर्म करता है तो अनेक प्रकार के बंधनों को वो क्रिएट करता है। वैसे ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन आज की समय की सीमा के हिसाब से मैंने सिर्फ एक हिस्सा लिया कि व्यक्तिगत जो बंधन है वो हमारे किस किस माध्यम से क्रिएट होता है। तो पहला बंधन है कि जब देह अभिमान में स्थित होकर के हर कर्म करता है, अनेक प्रकार के बंधनों को क्रिएट कर देता है। दूसरा है स्वार्थ भाव को लेकर के जब मनुष्य कर्म करता है तो वो स्वार्थ बंधन क्रिएट करता है। तीसरा है कारण कि जब व्यक्ति कुसंग में आ जाता है, बुरे संग में फंस जाता है, तो उस कुसंग के प्रभाव में आकर के जो कर्म करता है वो भी कर्म बंधन क्रिएट हो जाता है। चौथा दोष दृष्टि वृत्ति, जब हमारी दृष्टि और वृत्ति में दोष, अनेकों के दोष देखना, उसका चिंतन करना, वर्णन करना, ये भी बंधन क्रिएट करता है। तो दोष दृष्टि वृत्ति ये बंधन का कारण है। पांचवा है, जब कर्मेंद्रिय के अधीन होकर के कर्म करता है, या कहे कि कोई भी कर्मेंद्रिय की आसक्ति वश कर्म करता है, तब भी वो बंधन क्रिएट होता है। तो व्यक्तिगत रीति से अगर देखा जाए, और लास्ट में है स्वभाव संस्कार के वश होकर के कर्म करता, तो एक देह अभिमान, फिर स्वार्थ भाव, कुसंग, कर्मेंद्रिय की अधीनता, दोष दृष्टि वृत्ति को लेकर के कर्म करना, आसक्ति के वश होकर के कर्म करना, और पुराने स्वभाव संस्कार के वश होकर के कर्म करना, ये इंडिविजुअल सेल्फ के जो अनेक कर्म बंधन क्रिएट होने के कारण है, उनको आज हम देखेंगे कि उससे मुक्त होने की युक्ति क्या है। तो सबसे पहले जो कहा, देह अभिमान के वश कर्म करने की जो आदत पड़ी है, अनेक जन्म त्रय से जन्म देह भान के वश होकर के, उसके अभिमान में आकर के, अहंकार में आकर के कर्म करने की जो आदत पड़ी हुई है, ये कर्म बंधन बनता गया। तो उससे मुक्त होने की विधि बाबा ने जो बताई है, वो विधि है कि जब हम ये सोचते हैं कि करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूं, तो जैसे ही अपने आप को निमित्त समझा, तो ये विधि है उस देह अभिमान से मुक्त होने की। क्योंकि संगम युग में बाबा ने हम बच्चों को कर्म सन्यासी नहीं बनाया, कर्म योगी बनाया, और इसीलिए हमें कोई कर्म का सन्यास करके जंगल में जाकर के बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा कहे तुम्हें रहना भी गृहस्थ में ही है, कर्म भी करना है, और वो कर्म करते हुए भी तुम्हें मुक्त होना है, निर्लिप्त जीवन अपना बनाना है, कमल फूल समान जीवन बनाना है। तो कर्म तो करना है, लेकिन कॉन्शियसनेस को बाबा ने चेंज किया, हमारी स्मृति को बाबा ने चेंज किया। और इसके लिए जैसे ही ये स्मृति चेंज हुई, मैं कर रही हूं, तो वो मैंपन के बजाय बाबा करा रहा है, करण करावनहार वह है, तो सहजता से वो मैंपन के भाव से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। दूसरा, उसी मैंपन को समाप्त करने के लिए जो बाबा ने कहा, देही अभिमानी बन जाओ। प्रतिदिन मुरली के अंदर हम ये बात सुनते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर के कर्म करो। देही अभिमानी होकर कर्म करना अर्थात क्या, कि जैसे हम योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी स्थिति में बैठते हैं, आत्माभिमानी होकर के बैठते हैं। और आत्माभिमानी का मतलब है कि आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप होना। जिस तरह देह अभिमान माना क्या, आज कोई भी व्यक्ति देह अभिमान के वश कर्म करता है, आप साक्षी होकर के जब देखते हैं तो सहज भाव से निकलता है बड़ा अभिमानी है। कैसे पता चला कि ये व्यक्ति बड़ा अभिमानी है? ऐसा क्या देखा आपने उसके कर्म में जो आपको पता लगा कि ये अभिमानी है? उसने आपसे बातचीत भी नहीं किया, आप दूर से साक्षी होकर के उसको देख रहे हैं, तो कैसे पता चला कि ये अभिमान में आकर के कर्म कर रहा है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अभिमान में आकर कर्म करता है तो उसके हर कर्म से कोई न कोई विकारों की बदबू आती है। कहां क्रोध की बदबू आती है, रोब दिखाता है उसकी बदबू आती है, कहां लोभ की बदबू आती है, कहां ईर्ष्या द्वेष की बदबू आती है, तो कोई न कोई विकारों का अंश भी होगा। जैसे कोई ईर्ष्यावश अगर मान लो कि किसी की निंदा कर रहा है तो देखने वाला क्या कहेगा? यही कहेगा कि पता नहीं अपने आप को तो क्या समझता है कि दूसरों को बहुत तुच्छ समझने लगता है, देखो कैसे निंदा कर रहा है, कितना अभिमान है उसको अपना, कहेंगे ना। तो जहां कोई ना कोई विकारों के अंश मात्र भी फीलिंग आती है उस कर्म से, उसको कहेंगे देह अभिमानी। तो देही अभिमानी मतलब कि जब हम कर्म करें तो आत्मा के सातों गुणों का या कोई न कोई सद्गुणों का प्रवाह आ जाए। बातचीत कर रहे हैं, देह अभिमान में है तो रोब में तो अहंकार दिखता है, लेकिन देही अभिमानी होंगे तो मृदुभाषी होंगे, मधुरता होगी उसकी वाणी के अंदर, दूसरों का सम्मान करते हुए बातचीत करेगा, तो कहेंगे ये तो जैसे देवता है। देही अभिमानी के लिए अक्सर लोगों ने क्या कहा, ये बात करता है लेकिन जैसे देवता है, उसके मुख से फूल झड़ते हैं, किसी को पत्थर नहीं लग रहे, ये देही अभिमानी स्थिति। तो जहां कोई न कोई सद्गुण का प्रवाह है हमारे कर्म में, उसको कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। तो देह अभिमान वाली स्थिति को समाप्त करने के लिए एक तो बाबा करण करावनहार, दूसरा देही अभिमानी होकर कर्म करो, और तीसरा स्वमान में स्थित होकर कर्म करो। बाबा ने हम बच्चों के इतने सुंदर सुंदर स्वमान दिए, और इसीलिए ये स्वमान जो है खाली रिपीट करने के लिए नहीं है, लेकिन ये स्वमान का स्वरूप बनना है। जब वो स्वमान का स्वरूप हो करके हम कर्म में आते हैं तो अपने आप एक बहुत ऊंची फीलिंग अपने अंदर क्रिएट करते हैं, और उससे हम अनेक आत्माओं को भी प्रेरणा दे सकते हैं, वो भी उस बात को देखते हुए समझते हुए फील करते हैं कि ये स्वमान में स्थित है। इसीलिए ये तीन विधि है, देह अभिमान रूपी स्थिति के द्वारा जो बंधन क्रिएट होते हैं उसको समाप्त करने की युक्ति बाबा ने यही तीन बताई है। बाबा करण करावनहार है, देही अभिमानी होकर कर्म करो और स्वमान में स्थित होकर के उसका स्वरूप बनकर के कर्म करो। ठीक है, दूसरा जो कहा कि कर्मेंद्रिय की अधीनता, क्योंकि उसी में स्वार्थ भाव भी आता है, आसक्ति भी आती है, दोष दृष्टि भी आ जाती है कोई ना कोई कर्मेंद्रिय के कारण, तो ये कर्मेंद्रिय की अधीनता से स्वयं को मुक्त करने के लिए जो बाबा ने हमें विधि बताई है कि बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, अपनी ही कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य अधिकार प्राप्त करो। मैं आत्मा मालिक हूं, ये कर्मेंद्रिया मेरे मन को विचलित नहीं कर सकती है। इतना स्वयं को उस राज्य स्थिति में ले आए, और जब ऐसे राज्य स्थिति में ले आएंगे और कर्म करेंगे तो वो कर्म बंधन के बजाय कर्म संबंध हो जाएगा, अर्थात कर्मेंद्रिय के संबंध में उसको यूज कर रहे हैं, मालिक होकर के यूज कर रहे हैं, तो कर्म संबंध हमारा बनेगा, कर्म बंधन नहीं बनता है। क्योंकि या तो कर्म बंधन बनता है या तो कर्म संबंध बनता है। तो जब उसकी अधीनता है तो ये बंधन बनेगा, जब मालिक बनकर के कर्म करेंगे, कर्मेंद्रिय को यूज करेंगे तो कर्म संबंध में आकर के हम कर्म कर रहे हैं। दूसरा जैसे कहा कि स्वार्थ भाव, तो बाबा ने हम बच्चों को ये विधि बताई कि बच्चे स्वार्थ भाव के बजाय सेवा भाव, इसी कर्मेंद्रिय के द्वारा सेवा करो। जब निर्माण होकर के हम सेवा करते हैं, एक सेवा भाव को जागृत करते हैं, तो वो स्वार्थ भाव विलीन हो जाता है। और सेवा भाव जैसे ही जागृत होता है तो ये पुण्य कमाने का आधार बन जाता है। तो यही कर्मेंद्रियां हमें पुण्य आत्मा भी बना देती है, लेकिन स्वार्थ भाव के वश कर्म करने लगते हैं तो यही अनेक प्रकार के बंधन क्रिएट करने लग जाती है। जब हम ये समझते हैं स्वार्थ भाव में आकर के कोई भी कर्म होता है, तो कई बार कई लोग देखते हैं दूसरे हैं कोई करने वाले, वेट करते हैं कोई दूसरा आए ऑफर करे तो उसको ये सौंप दिया जाए, है ना। एक बार की हंसी की बात सुनाती हूँ कि एक बार हमने एक भाई से कहा, भैया थोड़ा समय होगा आपके पास ये सेवा करनी है, तो पहले तो इधर उधर होते रहे। हम जानते थे उसका नेचर क्या है, वो हमेशा अपने आप को बचाने का प्रयत्न करते, लेकिन उस दिन कोई था ही नहीं तो उसको कहा कि भई आप करेंगे, तो कुछ समय तो इधर उधर होने के बाद कहने लगे, अच्छा बताओ ये सेवा मैं करूंगा तो क्या होगा। मैंने कहा भाई आपका पुण्य जमा होगा। तो कहा बहन जी मैं बचपन से कुमार होकर के इतनी सेवा करता रहा यहां, अब मुझे ऐसा महसूस होता है मेरा पुण्य ओवरफ्लो हो रहा है। मरी हंसी आई। तो इसीलिए जो है कहने का भावार्थ उसका यह था, ये सेवा आप किसी और को दे दो, किसी और से करवा लो, है ना। मेरा सेवा का करते करते बचपन से मैं सेवा कर रहा हूं और इसीलिए अभी मैं समझता हूं मेरा पुण्य बहुत ओवरफ्लो हो रहा है, किसी और से करवाओ। तो हमेशा देखा जाता है कि जब हम ये सोचते हैं कि ये सेवा करने के बदले मैं अपनी कर्मेंद्रिय को थोड़ा आराम दे दूं, थोड़ा सुख का अनुभव करा दूं, कहने का भावार्थ मेरा यही है कि जहां आप खुद की इंद्रियों को सुख या आराम की अनुभूति कराना चाहते हैं तो उससे क्या होगा कि आप पुण्य तो जमा नहीं कर पाएंगे लेकिन अनेक प्रकार के बंधनों से भी कई बार अपने आप को फ्री नहीं कर पाएंगे। सेवा ही वो माध्यम है जो अनेक प्रकार के बंधनों से हमें मुक्त करता है, अनेक प्रकार के बंधनों से हमें सहजता से मुक्ति दिलाता है, कई कड़े संस्कारों के बंधन से हमें मुक्ति दिलाता है। क्योंकि जब आप सेवा में आकर के कर्म करते हैं, उस भावना को लेकर कर्म करते हैं, तो ये खाली कर्मेंद्रिय को यूज कर रहे हैं इतना नहीं है, परंतु जैसे इन कर्मेंद्रिय को पावन बनाने का आधार है। इसीलिए कहा जाता है शास्त्रों में भी कि दधीची ऋषि ने अपनी हड्डी हड्डी सेवा में लगाई, यज्ञ सेवा में लगाई, तो हड्डी हड्डी पावन होती गई। भावार्थ ये कि जितना हम इन कर्मेंद्रिय को आराम पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं तो कर्म बंधनों से फ्री नहीं होते हैं, लेकिन जितना हम इन कर्मेंद्रिय के द्वारा सेवा करने लगते हैं तो एक तो हमारी हड्डी हड्डी पावन होने लगती है, दूसरा के हम अनेक प्रकार के बंधनों से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं, सहजता से हम अपने आप को मुक्त करते हैं। तो इसीलिए स्वार्थ भाव के बजाय सेवा भाव में जब उसको परिवर्तित करते हैं, खुद की इंद्रियों को सुख देने के बजाय उस दूसरों को सुख मिले इन कर्मेंद्रिय के द्वारा, अपने सेवा भाव के द्वारा जब दूसरों को सुख मिलता है तो उसकी भी दुआएं हमारे खाते में जमा होने लगती है। तो ये युक्ति है कि दुआओं को भी प्राप्त करना, पुण्य को भी प्राप्त करना और हड्डी हड्डी पावन होना, हमारी हर कर्मेंद्रिय पावन होना, तो हल्कापन महसूस करना उसमें। तीसरी बात जो कहा कि दोष दृष्टि वृत्ति, कि इस दृष्टि वृत्ति में जब दूसरों का दोष देखने का भाव जागृत हो जाता है, और कई बार किसी को आदत होती है कि हर एक ने कोई भी कर्म किया तो उसके बारे में कोई ना कोई दोष जरूर प्रकट करना है, ये तो है ही ऐसा, भाई उसने बहुत अच्छा काम किया, किसी ने महिमा किया तो क्या कहेगा, अरे आप जानते नहीं, आज दिखावे का काम कर रहा है, मना उसको दोष निकालना ही है। उसका कारण है, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जिसने जैसा चश्मा पहना होगा उसको वही दिखाई देगा, अगर हरा चश्मा पहना होगा तो सब हरा ही हरा नजर आएगा, अगर लाल चश्मा पहना होगा तो सब लाल ही लाल नजर आना है। और हमारे मैनेजमेंट में एक थियरी है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन रिफ्लेक्शन थियरी। प्रोजेक्शन रिफ्लेक्शन थियरी किसको कहते हैं कि आप हमेशा स्वयं को ही दूसरों में प्रोजेक्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे मैं आपको कोई बात कहूं कि एक बार एक व्यक्ति था, एक कहानी सुनाऊं मैं आपको कि एक बार एक व्यक्ति था और वो जा रहा था, तो आप हमेशा व्यक्ति अपने लेवल का समझेंगे, मैं मेरी हाइट जितना व्यक्ति होगा, व्यक्ति बोला तो मेरी हाइट जितना व्यक्ति होगा ऐसा होगा, तो हमेशा स्वयं को प्रोजेक्ट करते हैं आप दूसरे में, सुनते जाते हैं, तो वैसे वैसे आप अपना प्रोजेक्शन उस व्यक्ति में करते जाते हैं। तो इसी तरह स्वयं का रिफ्लेक्शन देखना, जिसको भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्शन में खुद का रिफ्लेक्शन देना देखना, उसको कहते हैं प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थियरी। तो जब आप किसी में भी अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, हो सकता है कि उसमें कई प्रकार की कमियां हो, लेकिन आप वही कमी देखेंगे जो आप में होंगी। जो खुद में होती है वही कमी हमें दूसरों में नजर आती है। इसीलिए और भी कमी कमजोरी होंगी जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है। दूसरा कहेगा नहीं नहीं ऐसा भी है ऐसा भी है। वो अपनी कमियों को देख रहा है, हम अपनी कमियों को देख रहे हैं उसमें, और इस तरह से उसको स्पष्ट कर देते कि ये व्यक्ति जो है ना कमियों का भंडार है ना? तो दोष दृष्टि वृत्ति, जब इस तरह की हमारी दृष्टि और वृत्ति है दोष देखने की, तब अनेक प्रकार के कर्म बंधन हम अनेक आत्माओं के साथ भी क्रिएट कर लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे हमेशा हर आत्मा की विशेषता को देखो, हर आत्मा में जो अच्छाई है उसको देखो, वास्तव में वो अच्छाई भी आपका ही रिफ्लेक्शन है। लेकिन जब आप किसी में अपना ही वो अच्छाई का रिफ्लेक्शन देखना शुरू करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी इस आत्मा के साथ एक समानता, विचारों की नेचर की समानता है, तो समीपता सहज आने लगती है। तो इसीलिए उस दोष दृष्टि वृत्ति से मुक्त होने के लिए निर्दोष अपने दृष्टि वृत्ति को बनाने के लिए जितना हम विशेषताओं का दर्शन करना आरंभ करते हैं, तो वो विशेषताओं का दर्शन करने से हमें बंधन क्रिएट नहीं होता है, लेकिन एक प्रेम के मीठे संबंध में हम अपने आप को अनेकों के साथ जोड़ सकते हैं, नहीं तो तोड़ने का काम करते हैं। और एक समय आएगा जब हर एक में अगर हम दोष दृष्टि ही देखते रहेंगे, वही दृष्टि वृत्ति हमारी होंगी, तो एक समय आएगा जब हम अकेले रह जाएंगे, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन जब हरेक के अंदर हम विशेषताओं का दर्शन करना आरंभ करते हैं, तो उससे हमारे बंधन क्रिएट नहीं होंगे, लेकिन हम निर्बंधन होते जाएंगे, और निर्बंधन होने के साथ साथ हम संगठन में अपने आप को पाएंगे। जो बाबा कहते हैं कि बच्चे संगठन का किला मजबूत करो, तो ये संगठन का किला हम मजबूत करना आरंभ करेंगे। तो इसीलिए विशेषता का दर्शन करो। तीसरा जो कहा कुसंग, कुसंग में आ जाते हैं, तो कुसंग में जब आ जाते हैं तो हमको बाबा ने श्रेष्ठ संग जो दिया है, दो श्रेष्ठ संग दिए हैं। कौन से दो श्रेष्ठ संग दिए हैं? सबसे पहला श्रेष्ठ संग हमें है मुरली का। मुरली श्रेष्ठ संग है। जितना जितना बार भी मुरली पढ़ते जाओ ना, लगता है कि और गहराई मिली। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि साकार मुरली हमारे पास 5 साल का स्टॉक है, हर 5 साल में ये रिपीट होती है। लेकिन आज भी जब ये मुरली सुनते हैं ना, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये पहली बार सुनी, ये मुरली पहले कभी सुनी नहीं थी। क्यों ये महसूसता होती है? क्योंकि पहले जो हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा की स्थिति थी वो आज से 5 साल पहले कैसी होगी? थोड़ा लोअर लेवल की होगी। जैसे जैसे हम अनुभवी बनते जाते हैं, ज्ञान की मैच्योरिटी आती जाती है, तो हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा की स्थिति भी तो बढ़ती है। वो पॉइंट को समझने का या वो पॉइंट को जब हमारे सामने आती है तो एक अलग दृष्टिकोण हमारा बनता है। और इसीलिए जब उस पराकाष्ठा से उस पॉइंट को हम समझने लगते हैं तो लगता है कि ये तो पहली बार हमने सुनी है, जबकि कितनी बार रिपीट हो गई। 74 से ज्ञान में हो तो आज वो मुरली कितनी बार रिपीट हो करके हुई होंगी? 8-10 बार तो रिपीट हो गई होंगी, लेकिन फिर भी आज ये महसूस होता है कि ये मुरली पहली बार सुनी। जैसे पहले ये पॉइंट सुनी नहीं थी। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले जो हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा की स्थिति थी, या 74 में जब हमने वो मुरली सुनी थी, उस समय हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा की स्थिति थी और आज की जो पराकाष्ठा की स्थिति है, कितना महान अंतर है। हर साल एक अंतर बढ़ता जाता है और इसीलिए वो बात जब आज सुनते हैं तो लगता है पहली बार सुनी। तो इसीलिए कुसंग से अपने आप को फ्री करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है मुरली का संग। और बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है। बाबा के संग का अनुभव बिना मुरली के हम नहीं कर सकते हैं। बाबा के स्नेह का अनुभव बिना मुरली के हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरा श्रेष्ठ संग है श्रीमत। श्रीमत का हाथ पकड़ लो। जैसे कोई भी संग में हाथ में हाथ देते हुए चलते हैं तो उसके जैसा संग और कोई नहीं। ठीक इसी तरह बाबा का, शिव बाबा का हाथ ही है श्रीमत। तो बाबा की श्रीमत के हाथ में हाथ दे दो और हाथ में हाथ दे करके चलो, वो संग जो होगा वो हर प्रकार के बंधनों से हमें बचाएगा। जब पर मत मन मत पर चलते हैं तो अनेक प्रकार के बंधन क्रिएट होते हैं, लेकिन जितना श्रीमत पर चलता है इंसान उतना बंधन मुक्त होने लगता है। तो इसीलिए बाबा ने बहुत श्रेष्ठ संग, एक तो मुरली का, दूसरा श्रीमत का हमें दिया है। ये दो संग में हम सदा बने रहे तो हर प्रकार के बंधन से अपने आप को फ्री कर सकेंगे। इनसे अच्छा संग और कोई हो ही नहीं सकता है। मुरली और श्रीमत के अलावा और कोई अच्छा संग हो सकता है क्या? कोई हो ही नहीं सकता है। जो हमेशा हमारी बुद्धि को क्या करेगा? रिफाइन करता जाएगा, दिव्य बनाता जाएगा और हमारे कर्म को सदा श्रेष्ठ महसूस कराएगा। वो कर्म के अंदर बल महसूस होगा, क्योंकि जहां कर्म बल हो इकट्ठा होना शुरू होगा तो ये कर्म योग की स्थिति, कर्म भोग की स्थिति से हमें मुक्त करेगा। क्योंकि बंधन क्या करेगा? भोगना का अनुभव कराएगा अंत में। तो भोगनाओं से फ्री होना है तो कर्म योग को अपने अंदर इतना जमा करो, श्रेष्ठ कर्म बल को इतना अंदर में जमा करो। जितना अंदर में जमा करते जाएंगे उतना ही उससे सहजता से हम फ्री होते जाएंगे। तो कर्मेंद्रिय की अधीनता हमें अनेक प्रकार के बंधनों में ले आती है। कुसंग दोष दृष्टि वृत्ति आसक्ति, जैसे ही कर्मेंद्रिय की आसक्ति के वश हम कोई कर्म करते हैं ये भी बंधन क्रिएट करता है। मुझे याद आता है कि एक बार एक यज्ञ माता है ना, सेंटरों पर कई माताएं ऐसी होती है जो पूरा समय देती है, चाहे ब्रह्मा भोजन हो चाहे कुछ भी हो, अपना पूरा समय बाबा की सेवा में देती है। तो एक सेंटर पर एक यज्ञ माता थी, उसको खाना बनाने का इतना शौक होता था और शौक होने के कारण रोज नई नई चीजें बहनों को खिलाना है, आज ये बहनों को बना के खिलाऊं, आज ये खिला, उसके अंदर उमंग रहता था। कोई भी अगर सेंटर पर मेहमान आए तो बस माता जी को खाली बोल दो, माता जी मेहमान आ रहे हैं, अरे कोई बात नहीं मैं बढ़िया चीजें बना करके खिलाऊंगी। और उसको इतना शौक होता था, ब्रह्मा भोजन किया तो इतनी सारी चीजें बनाना, अब जिसको बनाने का शौक होगा वो खाने का भी शौक तो होगा थोड़ा, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि माता जी बहुत बीमार पड़े, हॉस्पिटल में थे। अब परिवार से तीन बेटे थे, तीन बहुएं थी, लेकिन कोई ज्ञान मार्ग में नहीं था, लेकिन वो घर में भी बना बना करके उनको खिलाती रहती थी। बहुएं इतनी भाग्यवान अपने को समझती थी, हमारी सास इतनी अच्छी है हमको रसोई घर में घुसने नहीं देती है, खुश हो जाती है ऐसी बहुएं तो, है ना, कि भाई हमारी सास हमको कभी घुसने नहीं देती है और इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना करके खिलाती थी। अब वो हॉस्पिटल में थी तो माता जी नियमों में भी बहुत पक्की, किसी के हाथ का खाना नहीं खाती थी, बहुए भले उनको खिलाती जरूर थी लेकिन खाती नहीं थी, बहुत पक्की थी नियमों में। लेकिन कर्मेंद्रिय की आसक्ति जरूर थी, खाने की शौकीन जो थी। तो जैसे ही सेंटर पर पता चला माता जी को हॉस्पिटलाइज किया है, बेटों ने आकर के बताया भाई हमारे हाथ का तो खाएगी नहीं, तो सेंटर से टिफिन रोज जाता था, तीनों टाइम टिफिन जाता था उसको। जब तीनों टाइम टिफिन जाता था माता जी को खिलाते थे, एक दिन माता जी ने कहा ये अच्छा नहीं लगता है, रोज नई नई चीजें बना करके खिलाने की शौकीन जो थी, दाल रोटी सब्जी क्या खाएंगे, बोले ये कोई खाने की चीज है। तो उसने बहनों को कहा मेरे को है ना ये चीज भाती नहीं है। तो कहा माता जी क्या चाहिए आपको, कब पानी पूरी खाने का शौक है, पानी पूरी खाना है। तो बहनों ने कहा कि ठीक है कल बनाकर ले आएंगे। जब ये कहा माता जी को कि ठीक है कल बनाकर ले आएंगे, कहा नहीं कल तक क्या मालूम मेरा क्या हो जाए, मेरे को तो अब भी खानी है, पानी पूरी खानी है। आसक्ति देखो जीवा की क्या होती है। अब बहने कहे कि अभी का अभी तो बना करके नहीं ला सकते हैं, शाम को ले आएंगे अगर आपका हो तो। कहा नहीं अब भी खानी है। अब तीनों बेटे और बहुएं सामने खड़ी थी कि माता जी की इच्छा है खाने की और आप लोग मना करते हैं कि भाई शाम को कल लाएंगे या कल लाएंगे। तो धीरे से एक बहू ने पूछा कि माता जी आजकल जो है ना मशीन वाली वो पानी पूरी आती है, आप कहो तो वो और पानी बना करके ले आते हैं हम, खाएंगे? बोले हाँ खाऊंगी, हाँ कर दिया। अब बहुओं को तो लगा पहली बार हमारे हाथ से हाँ किया है माता जी ने, हाँ वो मशीन वाली पानी पूरी लेके आते हैं हम तल करके फटाफट। वो गई फटाफट लेकर के आई। अब बहनें देख रही माता जी इतनी पक्की और ये क्या हो गया है माता जी को, अब ये खाना खाएंगी है ना। तो खड़ी हो गई बहने तो वहां उसको दृष्टि देती रही, बोल तो सकते नहीं थे, इतना छोटी बहने थी तो क्या बोलेंगे। तो अभी देखे कि माता जी क्या करेगी। अब जैसे पानी पूरी सामने आई उसको तो बड़ा मन हो रहा था पानी पूरी खाऊं मैं। लेकिन जैसे ही सामने आई बहने देख रही है कि माता जी ये क्या करने जा रहे, जिंदगी भर आपने अपने नियमों का पालन किया और ये हॉस्पिटल में आकर के पता नहीं कब आपका अंतिम क्षण आ जाए और ये क्या कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर देखो और नमक वाला वो पानी होगा पता नहीं कैसा होगा और एकदम शूट करेगा क्या हो जाएगा। लेकिन बहने तो शुभ भावना का दान देती रही कि माताजी न खाए, माताजी न खाए, शुभ भावना अपनी देती रहे। प्लेट सज करके सामने आई, माताजी ने अंदर डाल करके जैसे ही यहां तक ले गई और पता नहीं या क्या हुआ फेंक दिया और कहा नहीं चाहिए मुझे, है ना। और उसके बाद इतना रोई कि ये आसक्ति भी कैसी चीज है। तो बाबा भी जो हम बच्चों को कहते हैं ना, ये जीवा की आसक्ति जो है ना, ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं वो खाऊं, जो हमेशा अंदर में कई बार कई लोगों को आदत हो जाती है, भाई जो मिला बाबा के घर से प्रसाद के रूप में मिला, इतना सौभाग्य है जो हमको मिल रहा है भगवान के घर का खाने का, तो ये खाऊं वो खाऊं जो हो जाता है कई बार, आसक्ति आ जाती है जीवा की, है ना। तो वो आसक्ति क्या करेगी, आसक्ति क्या करेगी, अनेक प्रकार के बंधनों को भी ला सकती है। आसक्ति अनेक प्रकार के बंधनों को ला सकती है। और उसके बाद जो है जैसे अपने आप को फ्री कर दिया, खिलाने का शौक रहा लेकिन उसके बाद जो आसक्ति थी वो जीवन से सदा काल के लिए छूट गई, मुक्त हो गई। तो ये महसूसता है कि जब हम कर्मेंद्रिय को अधिकारी बन करके यूज करते हैं तो अनासक्त वृत्ति अंदर में आ जाती है। और यही अनासक्त वृत्ति की बात तो श्रीमद् भगवद गीता में बार बार भगवान ने अर्जुन को कहा है कि अनासक्त होकर के कर्म कर। तू आसक्ति में आकर कर्म करेगा तो अनेक प्रकार के बंधन क्रिएट करेगा, तो अनासक्त होकर के कर तो देखो बंधनों से मुक्त होने लगेगा। और इस तरह से जब हम कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करके कर्म योगी बन करके कर्म करने लगते हैं तो ये कर्म का बल हमें बहुत अंदर में शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा कर्म योगी जो होता है, अर्थात वो अपने अंदर श्रेष्ठ कर्मों का बल इकट्ठा करता है और ये बल ही अनेक प्रकार की भोगनाओं से अंत में हमें मुक्त करेगा। इतना ही नहीं, लेकिन जब बंधन मुक्त बनने लगते हैं तब दिव्य बुद्धि का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। जब आसक्ति में आकर कर्म करते हैं, कर्मेंद्रिय के अधीन होकर के कर्म करते हैं तो हमारी दिव्य बुद्धि काम नहीं करती है। और बाबा ने इसीलिए हम बच्चों को ब्राह्मण जन्म लेते ही ये दो गिफ्ट जो दिया है हर ब्राह्मण बच्चों को, कौन सी गिफ्ट दिया है हमको, एक तो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट मिली है और दूसरी स्वतंत्रता मिली है उस दिव्य बुद्धि का प्रयोग करने की। ये दो गिफ्ट हमें प्राप्त हुई है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब दिव्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं तब हम बंधन मुक्त सहज हो जाते हैं। दिव्य बुद्धि हमारे हर कर्म योग युक्त स्थिति में करने के लिए हमें प्रेरित करता है। योग युक्त होकर के हम कर्म करना शुरू करते हैं और योग युक्त ही हमें बंधन मुक्त करती है, योग युक्त स्थिति। तो योग युक्त माना एक तो दिव्य बुद्धि युक्त होकर के कर्म करना, दूसरा योग युक्त माना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में स्थित होकर के कर्म करना, सकारात्मक मनस्थिति में स्थित होकर के कर्म करना। तीसरा, जो कर्म हम करें बड़े खुशी से आनंद की स्थिति का अनुभव करते हुए करें, उसको कहते योगयुक्त होकर कर्म कर रहे हैं। जो कर्म हमें खुशी प्रदान करे, उमंग उत्साह हमारे अंदर ले आए, आनंद की स्थिति का अनुभव कराए, ये है योगयुक्त स्थिति। और साथ साथ योगयुक्त होकर कर्म करना, माना हर कर्म को यादगार बनाना, हर कर्म को यादगार बना देना, कि जब हम अपने जीवन को पीछे मुड़ करके देखें तो हर कर्म रूपी यादगार हमने छोड़े हुए हैं, अनेकों के दिल में वो कर्म रूपी यादगार को छोड़े हुए हैं, वही तो अमर हो जाता है, कि बाद में भी जब लोग उसको याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं, उसके कर्मों को लेकर के याद करते हैं ना। तो जिसने योगयुक्त होकर कर्म किया है उसका हर कर्म यादगार अनेकों के दिल में छप जाता है। ऐसे यादगार बनाने वाले कर्म हो हमारे, तब अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त, कि जहां लोग भी एग्जाम्पल देंगे कि अरे भाई ये भी हमारे जैसे ही थे, लेकिन देखो कितना सुंदर जीवन था, कितने श्रेष्ठ कर्म थे, जिसका कर्म यादगार बन गया है, अनेकों के लिए प्रेरणा बन गई हो, ऐसा जिसके कर्म हो वो बंधन नहीं होता है, वो बंधन मुक्त स्थिति वाला कर्म। इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को मिसाल देते हैं कि आज देवताओं की जो पूजा होती है, कई देवताओं के मंदिर में देखो तो उसके हर कर्म की पूजा हो रही है ना, उसका उठने से लेकर के, उसका स्नान का लेकर के, उसका भोजन का लेकर के, हर कर्म की पूजा है। क्यों? क्योंकि उसका हर कर्म यादगार है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि बच्चे आपके कर्म इतने श्रेष्ठ हो, योगयुक्त स्थिति में किए हुए हो, जो आपके हर कर्म यादगार बन जाए, अनेकों के दिल में छाप छोड़ जाए, ऐसा आपका कर्म हो तो कहेंगे हाँ बंधन मुक्त स्थिति का कर्म है। तो इसीलिए यही यथार्थ कर्म योगी स्थिति है, जो हमें कर्मातीत बनने में भी बहुत मदद रूप होती है। ठीक है, तो ये स्व के जो बंधन थे, उस स्व के बंधनों से मुक्त होने की युक्ति, उसकी मुक्ति की युक्ति जो है आज हमने देखी। कभी और समय मिलेगा, जो दूसरों के साथ के हमारे बंधन है, और लास्ट में जो कहा था स्वभाव संस्कार जो बंधन क्रिएट करते हैं, तो बाबा ने हम बच्चों को उसके लिए बहुत सुंदर विधि ये बताई कि बच्चे अपने अनादि संस्कारों में स्थित हो जाओ। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, लोहे से लोहा कटता है, हीरे से हीरे को काटा जाता है, ऐसे ही संस्कार से संस्कार को काटा जा सकता है। तो पुराने स्वभाव संस्कार से अगर मुक्त होना है तो उसके लिए अनादि संस्कारों का प्रयोग करना शुरू करो। आत्मा के अनादि संस्कार कौन से हैं, कितने श्रेष्ठ है। आदि संस्कारों को देखो, सतयुग के संस्कारों को देखो, उन संस्कारों को स्मृति में ले आओ, और उन संस्कारों के आधार पर जब हम कर्म करना शुरू करेंगे तो आदि और अनादि संस्कार से ये मध्यकाल के संस्कार जो है उसको हम काट सकते हैं। तब पुराने संस्कारों से जो बंधन बनता है उससे हम सहज अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी, आपने बहुत शक्तिशाली शब्दों में शक्ति का अनुभव कराते हुए हमें बंधनों से कैसे मुक्त हो इसकी युक्तियां बताई है। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी 8 बजे तक योग में बैठेंगे और बहुत उच्च स्थिति का, ज्वालामुखी स्थिति का अनुभव करेंगे।
हमारे शेष बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
कर्म हमारे
देश बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे,
हमें देख कर और करेंगे,
हमें देख कर और करेंगे,
हमें देख कर और करेंगे।